सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज खुशी का अवसर है जो कि आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हो रही है, जो एक सत्संग के रूप में ये घड़ियां बीत रही हैं और दुनिया के इस हिस्से में, इस मुल्क में, जर्मनी के इस फ्रैंकफर्ट के इलाके में, जहां कल रात को ही यहां पहुंचना हुआ और यही जिक्र हुआ कि फ्रैंकफर्ट में करीब 10 बरस के बाद इस प्रकार से सत्संग करने का मौका मिल रहा है। यूं तो साल दो साल बाद कहीं ना कहीं यूरोप में आने के मौके मिलते आ रहे हैं, लेकिन इस बार करीब 2 हफ्ते पहले ही इस तरफ आने का ध्यान बना और ये थोड़े से अरसे में ही ये सारी तैयारियां हुई। और आप सभी जानते हैं कि इन कंट्रीज़ में जुलाई अगस्त में वेकेशंस चल रही होती हैं स्टूडेंट्स की, और अक्सर लॉन्ग टर्म पहले से ही प्लानिंग हो जाती है कि छुट्टियों में कहीं इंडिया जाना है या कहीं और वेकेशन पे जाना है या किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। तो इसलिए केवल 10-12 दिन पहले कोई सूचना मिले तो बहुत इस प्रकार से वंचित भी रह जाते हैं, जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं कि हालांकि इतनी बड़ी हाजिरी में सभी उपस्थित हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही सूचना मिलने के कारण बहुत से यहाँ नहीं भी पहुँच पाए, लेकिन उनके भी मनों में वही भाव हैं जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं। अनेकों संस्थाओं का सहयोग इस कार्य में लगातार मिल रहा है, जैसे कि आज भी आपने उन जमात उन सज्जनों को श्रवण किया जो कि बिल्कुल ही वही उसूल हैं जिस पे मिशन चलने का प्रयास कर रहा है, और वही उसूल मानवता के, इंसानियत के, खुलूस के, जो एक इंसान का म्यार ऊंचा हो, इस धरती को सजा संवरा सा रूप मिले, तो वही एक भाव लिए हुए सभी यहाँ पर आप उपस्थित हैं। और जहाँ कहीं पर भी जाने का मौका मिलता है वहाँ वहाँ ही संसार के इंसान तक यही एक संदेश पहुँचाने का ये प्रयास रहता है, ताकि दुनिया का एक रूप सुंदर बन पाए, इंसान इंसान के करीब आए। ये मज़ो मिल्लत की दीवारें, ये जाति पाति की दीवारें, ये रंग नस्ल प्रांतों और मुल्कों की दीवारें जिन्होंने आज तक इंसान को बांटा है, ये दीवारें गिरें और इंसान एकता के सूत्र में बंध जाएं, एक दूसरे के हितैषी, एक दूसरे का दुख हरने वाले, एक दूसरे को खुशी देने वाले। तो यही एक महापुरुष संत जनों की देन इस संसार भर के इंसानों को ये युगों युगों से रही है। चाहे कोई सा भी युग हजारों बरस पहले की बात कर लें या कोई हम कुछ सदियों पहले की बात कर लें या फिर हम वर्तमान के दौर को देख लें, जो मानवता इंसानियत के रास्ते पे चलता आ रहा है उसने ही इस दुनिया को एक सुंदर रूप दिया है। जैसे सूरज ने ही उजाला दिया है, रात्रि ने अंधेरा ही दिया है हमें, मानवता की डगर पर चलने वालों ने ही राहत दी है, दानवता के रास्ते पे चलने वालों ने ही कलह कलेश मचाए हैं। तो इंसानों को सोचने और समझने की ताकत मालिक ने बख्शी है, तो इंसान ने ही चुनना है, चयन करना है, चॉइस इज योर्स जैसे कहा जाता है, कि ये चुनना है इंसान ने कि उसने उजाले का रूप खुद भी बनना है और औरों के जीवन में भी उजाला करना है, या खुद भी अंधकार में भटकना है और औरों का भी जीवन अंधकार में बनाना है, राहत की सांस ले पाए सभी ये देन देनी है, या कि घुटन भरा वातावरण दुनिया को देना है, जुबान की कड़वाहट हो या मीठे वाणी हो, उजाड़ना है या बसाना है, दिलों को दुखाना है या महरम का रूप बनना है, तो इंसान ने चुनना है। और सोचने समझने की ताकत दी है मालिक ने, लेकिन एक ऐसी नादानी, एक ऐसा पर्दा सा इसकी मत के ऊपर छा जाता है, एक ऐसा अंधकार इसको घेर लेता है कि ये रास्ता फिर सही ना चुनकर गलत रास्ता चुनता है, और उसी भाव में बहता हुआ ये अपना और औरों का नुकसान ये किए चले जाता है। तो आज भी इस सत्संग में जो एक भाव आपने श्रवण किए, वो सभी इसी की ओर हमें अग्रसर कर रहे थे कि चाहे वो टीचिंग्स लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की हों, चाहे वो राम जी की हों, भगवान कृष्ण की हों, हजरत मोहम्मद साहब की हों, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की हों, वो वाणी चाहे रविदास जी की हो या कबीर जी की हो या मीराबाई की हो, वो तुकाराम जी की हो या नामदेव जी की हो, वो किसी भी घट से ये एक पैगाम, ये रोशनी संसार को मिली समय समय के ऊपर, वो मुबारक है। वो मुबारक इसलिए है कि उसी में सबका हित छिपा हुआ है, वो मुबारक है उनका आना भी, मुबारक है उनका संसार में ये सुंदर योगदान देना भी, मुबारक है कि उनसे प्रेरणाएं आज भी ली जा रही हैं। तो जो मार्ग, जो रास्ता महापुरुषों ने, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने दर्शाया है, उस मार्ग पर चलने की जरूरत है। हवा तो हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही हम पांच तत्व के बने हुए पुतले, जहां ये हमारा जो रूप ये तत्वों के रूप में है जिस्मानी, इस लिहाज से देखें या कुदरत के लिहाज से शरीर को जो जरूरियात है उसके पूर्तियां तो हो रही हैं, लेकिन एक स्थान पर एक रूप में जो कमजोरी सी रह गई है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, उसकी तरफ इंसान वो सजग नहीं है। जैसे थोड़ी सी भी सांस लेने में दिक्कत आए, सांस उखड़ने लगे तो एकदम से बेचैन हो जाते हैं हम कि सांस रुक रही है, एकदम से हमारी वो एफर्ट शुरू हो जाती है, डीप ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं या किसी और साधन की जरूरत का सहारा लेने लग पड़ते हैं, क्योंकि वी फील दैट देयर इज पॉसिटी ऑफ समथिंग, समथिंग इज लैकिंग एंड वी ट्राई टू मेक इट अप। अगर पेट में भूख लगनी शुरू हो गई है तो उस अभाव को पूरा करने के लिए हम जतनशील हो जाते हैं कि कुछ भी मिल जाए, कोई कुकी ही मिल जाए, कोई मंच कर लो, थोड़ा सा ही मुख में चला जाए, क्योंकि अंदर एक भूख सता रही है। तो इस तरह से देखें कि पांच तत्वों के हिसाब से जो हमारा शरीर है, इसमें जरा सा भी कोई कमी पेशी होती है उसका पूरा करने के लिए हम जागरूक भी हो जाते हैं, सजग भी हो जाते हैं, और उसके लिए जतन भी करने लग पड़ते हैं, उपराले एफर्ट्स भी करने लग पड़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सूक्ष्म सा सिलसिला है कि एक इतना बड़ा अभाव है इस आत्मा के लिए परमात्मा के रूप में, इतना बड़ा अभाव है इस मन में, इस नेकी का, एक प्यार का, एक खलुस का, ये इतनी बड़ी कमी है। और इंसान ऐसा है कि ये महसूस ही नहीं करता है कि इतनी बड़ी कमी है इसके जीवन में। दुनियावी कोई कमी है, अखरती है, एक मिनट में अखरती है, लेकिन जिसपे ऊपर सारा दारोमदार लोक और परलोक का टिका हुआ है, वो इंसान को कमी महसूस ही नहीं होती है। बस खाओ पियो, मौज मेले करो, एक बार ही तो जीना है, अय्याशियां कर लो, जो मर्जी कर लो, दूसरों का शोषण कर लो, एक्सप्लॉयट कर लो, हमारे में ताकत है, हमें कोई पूछने वाला नहीं, हजार लाख बंदे इकट्ठा कर लेंगे, चाहे गलत भी करें उनको दबा लेंगे जो सही हैं। तो ये सब हमारी सोच, हमारे ख्याल इस प्रकार से चलते चले जाते हैं और हम महसूस ही नहीं करते कि इतनी बड़ी कमी है हमारे जीवन में, इतना बड़ा अभाव है हमारे जीवन में। और ऐसा अभाव है कि हमेशा के लिए हमारे लिए शर्मिंदगी छोड़ जाएगा। और हरि इस अल्लाह के निगाह में, इसकी दरगाह में भी हमें लानत और दुत्कार मिलने के सिवाय और कुछ हमारे पल्ले आने वाला नहीं है। भूल जाए कि जन्नत नसीब होगी, भूल जाएगी कि स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, भूल जाए कि हम बड़े ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे, नहीं, ये तमाम स्क्रिप्चर्स, ये तमाम धर्म ग्रंथ, ये तमाम वली गुरु पीर पैगंबरों की वाणी, ये कब से हमें चेतन कर रही है, ये कब से हमें सुचेत कर रही है कि ये इंसान तेरे गलत ख्याल है, ये अज्ञानता के अंतर्गत तेरी सोच है। अगर तू ऐसा सोच रहा है, अगर ये कमी की पूर्ति ना हुई, जो तेरे जीवन में जो कमी है वो अगर बरकरार रही, तो ये भूल जा। अगर अंधेरा तेरा अंधकार दूर नहीं हुआ तो भूल जा। अगर दानवता और शैतानियत वाली फितरत तूने नहीं तजी तो भूल जा। अगर अभी भी तू दूसरों को लूटने और दूसरों के हक को छीनने में यकीन कर रहा है तो भूल जा। अगर अभी भी तू दूसरों को आंसू देकर खुशी मनाता है, जश्न मनाता है, तो भूल जा कि तेरा रुतबा ऊंचा है, तेरा कोई म्यार ऊंचा है, या फिर तू इंसान कहलाने का भी हकदार है, वो भी हक तूने खो दिया है। हकदार है इंसान कहलाने का अगर वाकई ही तूने वो कदम उठा लिए हैं, अगर वो लौ जगा ली है, अगर वो वास्तविकता में तूने वो नाता जोड़ लिया है, सच को आधार बना लिया है, इस अल्लाह को हृदय में बसा लिया, इस राम, इस निराकार, इस अकाल पुरख, इस परमात्मा का एहसास कदम कदम के ऊपर है तुझे, और इंसानों के प्रति हित का भाव जागा है, तो फिर ये तुझे तसल्ली मिल जाए कि वाकई ही तेरी शुमार उनमें नहीं है जो पहले प्रकार के लोग हैं। और फिर तू इस पहलू को और मजबूत आए दिन करता चला जा, जिस पहलू की अहमियत ये युगों युगों से ये मानी गई है, इस पहलू को फिर तू हर सांस, हर पल, हर दिन, हर पहर इसको ही मजबूत करने में लग जा, इसको कमजोर ना होने दे। अगर आज कुछ बेहतरी तेरे जीवन में आई है तो वो शॉर्ट लिव्ड ना हो कि आज है तो कल को तो नजर ही नहीं आ रही है, आज तो कल तो देखा था बड़ा मीठा है, आज तो इतना कड़वा है, कल तो इतना विनम्र था, आज तो इतना अहंकारी है, कल तो ये सबका भला मांग रहा था और आज खुद ही नुकसान करने के लिए उतर आया है। तो ये अगर कुछ बेहतरी अच्छाई हमारे जीवन में आई है तो परछाई की तरह ना हो कि आई और चली भी गई, ये लॉन्ग लास्टिंग हो, ये पूरी तरह से हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए, ये हमारा एक रूप बन जाए। हां, अगर क्षण भंगुर या थोड़ी देर के लिए अगर कुछ आ भी जाता है भूले भटके, तो वो ख्याल एक पल में दूर चला जाए वो बेहतर है। वो नफरत वाला, वो जलन वाला, वो हिरसो हवस वाला, वो लोभ वाला, वो अगर भूले भटके कहीं दाएं बाएं से आ भी गया है, उसको पकड़ ना लो, उसको उसी वक्त साथ साथ आगे धकेल दो कि आ गया है मेरे पास, तेरा स्थान मेरे पास नहीं है, आगे जा। उसको आगे धकेल दें, उसको नहीं अपनाना है, उसको नहीं संभालना है कि जैसे कोई बड़ी कीमती चीज है उसको संभाल लिया जाए। वो तो नुकसान वाली चीज है, उसको काहे को संभालना है, उसको खुद भी क्यों संभालना है और उस चीज को दूसरों को भी क्यों बांटना है जो है ही नुकसान की चीज। संभाले भी वही, बांटे भी वही जो लाभ देने वाली है, जो हमारे जीवन में आनंद लाने वाली है, जो हमारे प्रति सत्कार बढ़ाने वाली है, जो हमारा मुख उजला करने वाली है, जो लोक और परलोक में हमें शाबाशी दिलाने वाली है, उस भाव उन उसूलों को हम अपना लें और परिपक्व कर लें अपने जीवन में। यही महापुरुष संत जन गुरु पीर पैगंबरों ने चाहा है, यही उन्होंने संदेश दिए हैं, यही पैगाम दिए हैं। और अगर फिर भी इंसान इसकी अनसुनी कर रहा है तो वो खुद उसने चुन लिया है अपना नुकसान करना, क्योंकि जैसे पहले कहा कि चॉइस इज योर्स, खुद उसने चुन लिया है अपना नुकसान करना। और जब खुद ही नुकसान करना चुन लिया है तो नुकसान तो फिर उठाएगा, लेकिन दूसरी तरफ गुरु पीर पैगंबरों की तरफ देखें कि वो ये भी नहीं बर्दाश्त करते कि दूसरे खुद क्यों चुनते हैं अपना नुकसान करना। इनको मति मिले, इनको सुमति मिले, ठीक है ये अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा क्या जाएगा। तो जो वाकई हितकारी होते हैं वो ये भी नहीं बर्दाश्त करते कि आखिर ये क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं, क्यों ये डूबने के साधन जुटा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कितना कुछ अपना भी दाव लग पे लगा दिया, कितने जुल्म और सितम सह डाले, कितने कहर हुए उनके ऊपर, कितनी बदनामियां समाज और ऐसे लोगों ने उनकी करने की कोशिशें की। रास्ते में एक पत्थर और रुकावटें बनने की कोशिशें की, लेकिन वो परोपकार वाले हितकारी, सारे संसार का भला मांगने और चाहने वाले, वो फिर भी ये देन देते चले गए। तो आज भी ऐसे योगदानों की अहमियत का एहसास ये हर किसी को रहे, ताकि वर्तमान पे जीने वालों ने ही ये देन देनी है। जो हो गुजरे हैं उनको अब क्या कहेंगे, वो अच्छे थे, नेक थे, मंजिल पे पहुंच चुके थे, पहुंच गए। जिन्होंने नहीं मानवता का रास्ता चुना, दानव बने रहे, अब उनका क्या हो सकता है। वर्तमान में हम जी रहे हैं, जिनके ये श्वास चल रहे हैं, संभाल समय की हमने करनी है, जीवन की चाल को हमने संभालना है, हम जो वर्तमान में जी रहे हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि लिव इन द प्रेजेंट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, बट वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट इन सच ए वे दैट फ्यूचर इज ऑल्सो ब्राइट। लेकिन अक्सर हम वर्तमान की अनदेखी इस कदर कर देते हैं, नादान बने रहते हैं, ना हम अतीत, ना हम हो गुजरे समय से सीखते हैं, ना ही हम वर्तमान की संभाल करते हैं, तो भविष्य कैसा होगा ये हम समझ ही सकते हैं। इसलिए कल हो या आज हो या आने वाला कल हो, इन सब की एक महत्ता इसी में छिपी हुई है कि इंसान इस प्रकार से जागरूक हो जाए, इस प्रकार से इसी मति को धारण करके इस जीवन के सफर को तय कर लें ताकि इस लोक में, इस जीवन काल में ही इनको वो रुतबा मिल जाए। जैसे ये कहावत मशहूर है, यू कैनॉट एंटर द हेवन इफ हेवन डजंट एंटर यू, कि आप क्या एक हेवन में प्रवेश पाओगे, क्या तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी, क्या तुम्हें जन्नत मिलेगी, अगर तुमने जन्नत को अपने अंदर ही नहीं आने दिया तो तुम अंदर जन्नत में कहां जाओगे। पहले तो जन्नत को अपने अंदर आने दो। जन्नत वो है उमदा ख्याल, जन्नत वो है जो प्यार के रूप में है, जो विशालता के रूप में है, खलूस के रूप में है, जो भाईचारे की भावना यक्ति के रूप में है, दया करुणा कंपैशन के रूप में है। तो इस जन्नत को पहले दिल में तो बसा लो, फिर कहीं ख्याल करना कि तुम्हारा जन्नत में वास होगा। तो अगर दूसरे लिहाज से देखें तो अगर जन्नत को ही दिल में बसा लिया है तो तुम जन्नत में पहले ही बस रहे हो। नर्क या स्वर्ग में बसेंगे, हम सोचते हैं कि जिस्मानी सफर तय हो जाएगा तब बात है स्वर्ग की या नर्क में बसने की, दोजख या जन्नत में तब बात है, जब ये जिस्मानी यात्रा संपन्न हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन काल में ही तुमने जन्नत को दिल में बसा लिया है तो तुम अभी ही जन्नत में बस गए हो। तो इसलिए क्यों ऐसी घड़ियां, ऐसे पलों, ऐसे लम्हों और ऐसे जीवन को बर्बाद किया जा रहा है, इतनी नादानी इंसान क्यों कर गुजर रहा है। तो इसीलिए जरूरत है कि हर इंसान इस प्रकार से सुचेत और चेतन हो जाए, भले बुरे की इसको पहचान हो जाए और चल निकले उस रास्ते के ऊपर जो रास्ता हमेशा ही महत्वपूर्ण और ऊंचा माना गया है। छोड़ दे ये विपरीत सी भावनाएं, तज दे ये अहम अहंकार, बन जाए विनम्र और संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाए, गिरा दे ये दीवारें मज़ो मिल्लत की, अपने आप को ऊंचा और छोटे दूसरे को छोटा मानने की फितरत को तज दे, तभी बात बनेगी। वरना तो इंसान की हालत आज हम देख ही रहे हैं कि अहम और अभिमान में चूर है। और जैसे वो शायर का शेरदास अक्सर कहता है कि आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है कि सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है, कि आदमी इतना अहंकारी कि मेरे जैसा सूझवान कोई नहीं, मेरे जैसा समझने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा ऐसा इल्म वाला कोई नहीं, और दूसरी तरफ पढ़ा सुना भी जा रहा है कि अल्लाह इल्मा बाजों राजी, और इधर ये इल्मों का, ताकतों का, पढ़ाइयों लिखाइयों का, विद्याओं का, दौलत का, ताकत का, हुकूमत का, सुंदरता का अभिमान किए चले जा रहा है। तो यही शायर ने कहने की कोशिश की कि आदमी का ऐसा रूप है कि आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है कि सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है। और अगर दिल भर गया, दिल भरा हुआ है यानी कि दिल में इस हरि का वास है, प्रभु का, इस अल्लाह का, इस निराकार का वास है, और अगर हरि का वास है तो हरि तो है ही प्रेम का रूप, यानी कि हृदय में प्रेम बस गया है। और जब हृदय में प्रेम ही बस गया है तो फिर तुम्हारा रुतबा भी खुदा वाला हो गया है, तुम्हारा रुतबा भी ऊंचा हो गया है, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा रूप भी सुंदर हो गया है। तो इसलिए हृदय में अगर स्थान दिया जाए तो वो इसी प्रेम और नेकी को दिया जाए, इसी विनम्रता को बसाया जाए। ये घर इन्हीं भावनाओं के लिए उचित है। ये हमारा घर का आंगन, ये हमारा दिल रूपी आंगन, इसके में बसाने के लिए ये कूड़े करकट का ये स्थान नहीं है, इसके अंदर तो स्थान एक है तो इस मालिक का और ये तमाम सुंदर भावनाओं का। और तब जाकर ये दिल वाकई ही खुदा का घर कहलाता है। अगर इस घर में खुदा को बसाया ही नहीं है तो फिर ये घर खुदा का कहाँ हुआ? ये दिल मंदिर है, अगर इसमें भगवान को स्थापित ही नहीं किया तो ये मंदिर कहाँ पर है? केवल कह देना कि दिल मंदिर है, दिल मस्जिद है, इससे नहीं बात बनेगी। दिल को मंदिर बनाना होगा, दिल को मस्जिद बनाना होगा, दिल में इस अल्लाह इस राम को इस खुदा को बसाना होगा। जैसे पीछे भी दास ने ये जिक्र किया कि अगर सही मायनों में पुजारी बनना है तो खुद मंदिर बन जाना होगा, कि अगर तुमने सही मायनों की पूजा करनी है तो खुद मंदिर बनना होगा, इससे कम बात बनने वाली नहीं है। तो खुद मंदिर बन ही जाएंगे, अगर खुदा को मन में स्थापित कर लिया तो मंदिर तो हो ही गए। बाकी मंदिर तो इमारतें, वो तो एक जगह पर बनी हैं, ईंट गारे की बनी हैं, एक जगह पर सीमित हैं। लेकिन अगर तुम खुद मंदिर बन गए तो एक जगह पर जमे हुए स्थूल सी चीज नहीं, अब तुम चेतन मंदिर बन गए जो चलते फिरते हैं। और चलते फिरते मंदिर बन गए, चलते फिरते पूजा स्थल बन गए, पूज्य हो गए ऐसे गुरु पीर पैगंबर संतों महात्माओं को याद भी किया जा रहा है, और उनका अनुकरण और उनका अनुसरण करने के लिए भी ये प्रेरणाएं ये लगातार दी जा रही हैं। और यही सत्संग का लाभ होता है, इसीलिए बार बार इस ओर प्रेरित किया जाता है, ताकि इंसान इस समय की संभाल करें और अपने इस जीवन को भी सुंदर रूप दें और धरती को भी सजाने संवारने में ऐसा एक महत्वपूर्ण ये योगदान दें। तो दास ज्यादा और शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 2-2.5 घंटे से यहाँ पर वाणी का इस्तेमाल किया गया और उत्तम भाव आपने गीत कविता व्याख्यान के रूप में श्रवण किए, चाहे वो इटालियन, चाहे स्पैनिश, चाहे डॉयच, चाहे वो इंग्लिश, चाहे पंजाबी, चाहे संस्कृत, चाहे किसी भाषा में भी आपने भाव श्रवण किए, तो वो सब के सब यही पहलू दर्शा रहे थे, जिसको जिस लड़ी को दास ने कुछ और आगे बढ़ाया है। और इसलिए शब्दों का सिलसिला तो ऐसा है, वो चलते ही रह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और अधिक दास शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा और अंत में फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ आकर आप सभी के दर्शन करके आपके साथ ये समा बिताकर ये मिल रही है। और जैसे दास ने कहा कि लंबे अरसे के बाद जर्मनी के इस फ्रैंकफर्ट के इलाके में ये सत्संग करने का अवसर, ये मौका ये प्राप्त हुआ है, और ये यूरोपियन समागम का तो जैसे दास ने कहा कि सहज में ही रूप बन गया, वरना तो समागम कोई निश्चित होता है तो कुछ अधिक समय दे दिया जाता है तैयारी के लिए, लेकिन यहाँ क्योंकि प्रोग्राम केवल तमाम यूरोप में यही था तो इसलिए ये तो समझ में बात आ रही थी कि अन्य स्थानों से भी महापुरुषों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। और जो जो दिन बीते चले गए तो संदेश मिलने शुरू हो गए कि क्यों ना हम इसको समागम का ही नाम दे दें, तो वाकई ही एक सहज में ही ये समागम का रूप बन गया, आपके उत्साह के कारण भी और दातार की कृपा और फजल के कारण भी। और इस प्रकार से ये बहुत खुशी हासिल हुई है। तो बाकी हिंदुस्तान से चलने के वक्त सभी ने आप सभी को अपनी शुभकामनाएं दी हैं और यही कहा है कि हर मुल्क में रहने वाले भक्त जन जो सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये इलाही दात को पाया हुआ है, उनको हमारी धन्यकार और हर मुल्क में हर रहने वाले बशिंदे को भी हमारी शुभकामनाएं, हमारी वेल विशेस और हमारी प्रेयर्स कि जिस जिस मुल्क में भी कोई रहता है वहाँ वहाँ ही अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो और सभी मिलजुल कर इस जीवन के सफर को तय करें एकता के सूत्र में बंधकर। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा और कल फिर रवानगी है और ये यात्रा काफ़ी स्थानों पे जाने की निश्चित हुई है। तो दातार कृपा करें कि इसी प्रकार से एक सुंदर समय बीते और सुंदर भावनाओं से युक्त सभी के दर्शन करने का मौका मिले। सत्संग जी धन्यवाद।